जीवन के छोटे छोटे से अनुभव, छोटी छोटी सी घटनाएं जीवन को बहुत बड़ा संदेश देती हैं। बच्चों और बड़ों सभी, आज अपन बैठ करके छोटी छोटी घटनाएं जो बड़े बड़े लोगों के जीवन में घटित हुई उनको मैं आपको सुनाता हूं। पढ़ने से सुनने में ज्यादा मजा आता है, तो ऐसा समझो कि हम तुम्हें बोध कथाएं सुना रहे हैं। वैसे भी कोई कितना भी बड़ा हो जाए, मैं तो सोचता हूं कि कहानी सबको पसंद, कहानी बहुत संदेश देती है। कहानी का अपना मॉरल होता है। एक जमाना था जब लोग लड़ते भी थे दिन भर, और रात होने से पहले लड़ाई बंद कर देते थे, तब फिर एक दूसरे के घाव पर पट्टी बांधते थे। एक रोज ऐसा हुआ कि एक सैनिक अपने भाई को खोजने निकला जो कि लड़ाई में घायल हो गया था। जब वो मिला तो उसने पानी मांगा। जैसे ही वो अपने भाई को पानी देने लगा, पास में ही आवाज आई कि भाई मुझे भी पानी पिलाओ। तो भाई ने उस तरफ इशारा कर दिया। वो सैनिक की तरफ बढ़ा तो देखा कि वो तो सैनिकों का सरदार था। वो जैसे ही उसे पानी देने लगा कि थोड़ी दूर से फिर आवाज आई कि पानी दे दो, तो वो जो सरदार था उसने इशारा किया कि पहले उसे दो। वो भाई भागा भागा उस तीसरे व्यक्ति तक पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते उस सैनिक ने अंतिम सांस छोड़ दी। सैनिक को छोड़ करके वो वापस सरदार के पास आया। तब तक देखा कि प्यास के मारे घायल सरदार भी दम तोड़ चुका था। तब वो अपने भाई तक पहुंचा, तब भाई भी तब तक प्यास के मारे संसार से विदा हो गया था। तीनों घायल नहीं रहे। इस घटना में कहते हैं कि तीन में से दो घायलों ने मानवता के इतिहास में अपना नाम रोशन कर दिया। उन्होंने स्वयं पानी नहीं पिया, दूसरे की मदद करने का भाव उनके भीतर आखिरी समय बना रहा। देखो ये कितनी छोटी सी घटना है जो कि हमें दूसरे की मदद करने की बात सिखाती है। अच्छा बच्चों, एक और छोटी सी बोध कथा सुनाता हूं। ये दक्षिण भारत में एक तिरुवल्लुवर हुए हैं, वो जुलाहे थे। अपन तिरुकुरल काव्य पढ़ते हैं, उसमें नीति के बहुत अच्छे अच्छे बोध वाक्य दिए हैं। वो उन्हीं तिरुवल्लुवर का लिखा हुआ ग्रंथ है। बहुत अलग अलग संप्रदाय के लोग उनको अपना धर्म गुरु मानते हैं। वे जैन साधु हुए, ये बात भी कहीं कहीं पर देखने में आती है। स्वभाव उनका बहुत शांत था, वे बड़े विनम्र भी थे, लोग उन्हें संत कहा करते थे। उनके गांव में एक बहुत धनी मानी व्यक्ति रहता था। उसका वो जो लड़का था उसको अपने पैसे का बहुत घमंड था। वैसे देखो बच्चों, अपने पैसे का घमंड नहीं होना चाहिए ना, पर उसको बहुत घमंड था। तो उसने सोचा कि हम इनको, ये बड़े शांत बने फिरते हैं, संत बने फिरते हैं, हम इनको जरूर अब क्रोध दिला के रहेंगे, इनको तंग करेंगे। तो वो उनकी दुकान पर पहुंच गया और उसने एक साड़ी निकलवा ली कि मैं खरीदूंगा, और उसके दाम पूछने लगा। तो तिरुवल्लुवर जो जुलाहे थे उन्होंने कहा इस साड़ी का दाम 2 रुपए है। तो उस लड़के ने उस साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और कहा कि इस 1 टुकड़े का कितना दाम। तो उन्होंने बहुत शांत स्वर से कहा कि 1 रुपए। बस उस लड़के ने जो है उस साड़ी का जो आधा टुकड़ा था उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। फिर कहा कि इसका क्या दाम है। तो बहुत शांति से तिरुवल्लुवर ने कहा कि इसका दाम 8 आने। अरे, पर उसका मन नहीं माना, उसने फिर उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। फिर पूछा तो उन्होंने कहा इसकी कीमत 4 आना है। उसने पूरे साड़ी को टुकड़े टुकड़े कर दिया और कहा कि मुझे नहीं खरीदना, इन टुकड़ों को कौन खरीदेगा। तो संत ने कहा कि हां सचमुच अब तो ये टुकड़े किसी के काम के नहीं रहे, मैं इन्हें रख लेता हूं। अब तो युवक को बहुत शर्म आई कि मैंने इन संत के प्रति ऐसा बुरा व्यवहार किया, फिर भी ये बहुत शांत रहे, इन्होंने जरा भी गुस्सा नहीं किया। अब उसे अपने कार्य पर लज्जा आने लगी। तो उसने कहा कि मैं आपके पूरे पैसा देना चाहता हूं। तो संत ने कहा कि जब सारे टुकड़े काम के नहीं है तो दाम किस बात का ले लूं, और सुनो अगर घाटा पूरा करना चाहते हो तो कैसे कपास उगाया होगा खेत में किसानों ने, कैसे उससे रुई बनी होगी, कैसे मजदूरों ने मिलके धागा बनाया होगा, और कैसे धागे से ये साड़ी बुन करके जुलाहों ने तैयार की होगी। क्या तुम इन सब की जो मेहनत बेकार हुई उसका पैसा चुका सकते हो? साड़ी बिगड़ने से तो दूसरी बन जाएगी, लेकिन तुम इस तरह करके अपनी जिंदगी बिगाड़ रहे हो, जिंदगी तो दूसरी नहीं मिल सकती है। ऐसे वे संत थे, हमको क्या शिक्षा मिली कि हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए जिससे कि दूसरे का काम बिगड़े नहीं बल्कि सबका काम हमारे जीवन से बने। एक संत थे, उनका नाम नामदेव था। उनके दिल में बड़ी दया थी। एक बार उनकी मां को दवा के लिए ढाक की छाल चाहिए थी, तो उन्होंने नामदेव को बुला के कहा कि जाओ बेटे और हमको दवा के लिए ढाक के पेड़ की छाल लेके आओ। नामदेव गए, छाल लेकर के जब वो वापस लौट रहे थे तो उनके मन में विचार आया कि अरे, पेड़ तो बोलता नहीं है और मैंने कुल्हाड़ी से उसकी छाल निकाली तो उसको दुख तो हुआ होगा, पर कितना दुख हुआ ये तो मैं नहीं जानता। सोचते सोचते उनके मन में आया कि क्यों ना मैं अपने पैर को ऐसे ही छील कर देखूं, कैसा दुख होता है तो मालूम पड़ जाएगा कि पेड़ को कैसा दुख हुआ होगा। ऐसा अपन कहां सोचते हैं कि दूसरे को दुख पहुंच रहा होगा, हमें तो अपना ही दुख दुख मालूम पड़ता है, दूसरे का दुख वो भोगता है, अपन उसको सिर्फ देख लेते हैं। पर नामदेव ने और अपने पैर की खाल छीलना शुरू कर दी, बहुत दर्द हुआ, सारी धोती खून से लथपथ हो गई। वापिस लौट करके आए, मां तो देख करके दंग रह गई। उसने कहा अरे ये क्या हुआ, तुझे कैसे लग गई? तो नामदेव ने कहा मां अब तुम मेरे से पेड़ की छाल मत मंगाया करे। क्यों, क्या हुआ, किसी ने कुछ डांट दिया, किसी ने कुछ वहां पर मारा क्या तुम्हें? नहीं मां, ना किसी ने मुझे डांटा ना मारा। जब मैंने पेड़ की छाल निकाली तब मुझे लगा कि इस पेड़ को बहुत दुख हुआ होगा। उसे कैसा दुख हुआ ये जानने के लिए मैंने अपने पैर को छील के देखा तो मां बहुत दुख होता है। इस तरह अगर हम अपने जीवन में दया और करुणा का पाठ सीखें तो ये घटना हमें दया और करुणा का पाठ सिखाती है। मां तो सारी बात सुनकर और उसका दिल भर आया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। बड़े होकर के फिर यही नामदेव और बहुत बड़े संत बने। संत किसे कहते हैं? जो सब जीवों के प्रति करुणा और दया का भाव रखता है वही तो संत है। है ना एक मजे की घटना। एक बार क्या हुआ, एक दूसरी बोध कथा सुनाता हूं। एक कल्प वृक्ष था। कल्प वृक्ष समझते हो? ऐसा वृक्ष जिससे जो सामान मांगो वो मिल जाता है, हैं? तो उसके नीचे जाकर के एक आदमी बैठा, वो थका हारा था। अब उसे तो मालूम नहीं था कि ये कल्प वृक्ष है। उस आदमी के मन में एक बात आई कि बहुत प्यास लगी है, कहीं से थोड़ा ठंडा पानी मिल जाता तो बस, उधर क्या देर लगना थी। वहां पर ठंडा पानी आ गया, उसने पिया। थोड़ी देर में उसके मन में विचार आया कि अरे भूख बहुत लगी है, थोड़ा खाना मिल जाता तो बस। विचार करते ही वहां पर बहुत प्रकार का भोजन आ गया। भोजन करने के बाद अब उसे आलस आने लगी। उसने कहा कि मेरा मन तो हो रहा है कि जरा बढ़िया से सो जाऊं। तो सचमुच वहां पर सोने के लायक पलंग और सारी व्यवस्था हो गई, वो वहां पर सो गया। अचानक उसे ऐसा विचार आया हैं कि कहीं इस सुनसान जगह में कोई शेर आके ना खा ले। बस ऐसा बुरा विचार आते ही और सचमुच में शेर आया और उसे खा लिया। देखो इस कहानी से, इस घटना से हमने क्या सीखा? विचारों की बड़ी महिमा है। अगर हम अच्छा विचार करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा। जरा सा एक बुरा विचार हमारे जीवन को तहस नहस कर देता है, हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छा विचार करना चाहिए। एक और बोध कथा सुनाता हूं। महाराष्ट्र के एक संत थे, उनका नाम था एकनाथ। वो सबसे प्यार करते थे और सबकी भलाई करते थे। वो रोज नियम से सुबह उठ करके नदी में नहाने जाया करते थे। नदी के किनारे एक बहुत बुरे किस्म का आदमी रहता था, बड़ा उपद्रवी था वो। और वो संत से चिढ़ता था। देखो बुरा व्यक्ति अच्छे व्यक्ति से क्यों चिढ़ता है मालूम? क्योंकि वो सोचता है कि मैं भी इसके जैसा अच्छा बन सकता हूं, पर मैं बुरा ही बनने में संतुष्ट हूं। उसे उस अच्छे व्यक्ति से इसलिए ईर्ष्या हो जाती है, हैं? कोई चीज अपने पास नहीं हो तो उतना दुख नहीं होता, अगर वही चीज दूसरे के पास हो तो फिर थोड़ा दुख लगने लगता है। तो ऐसा उसको ईर्ष्या और चिढ़ होती थी उस संत से। एकनाथ जब एक दिन नदी से नहा के लौटे तो उस उपद्रवी व्यक्ति ने उनके ऊपर मुंह में पानी भर के थूक दिया। तो संत पुनः लौट करके नहाने चले गए। वो फिर नहा के आए तो उसने फिर मुंह में पानी भर के उनके ऊपर थूक दिया। वे चुपचाप मुस्कुराते हुए फिर से नहाने चले गए। ऐसा मालूम कितनी बार हुआ? ऐसा 100 दफे हुआ। वो उनके ऊपर मुंह में पानी भर के थूकता था और संत जो है चुपचाप मुस्कुराते हुए फिर से नदी में नहाने चले जाते थे। अब ऐसा करने पर उस आदमी को तो बड़ी लज्जा आई कि अरे मैंने तो जो है इनको इतना तंग किया, इतना परेशान किया, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं किया, कहा, तो वो उनके पैरों में गिर गया, क्षमा याचना करने लगा। तो संत ने कहा कि भाई तुमने कौन गलती करी है, तुम तो बहुत अच्छे हो, मुझे जो है नदी में नहा 100 दफे नहाने का पुण्य तुम्हारी वजह से प्राप्त हुआ है, बताओ ये कैसी दृष्टि है। सज्जन वही हैं जो दुर्जन के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं, दुर्जन वे कहलाते हैं जो कि सज्जन के साथ भी बुरा व्यवहार करते हैं, ऐसा पद्म पुराण जी में लिखा हुआ है। तो हमने इस घटना से क्या सीखा, यही कि हम तो सभी के साथ भला व्यवहार करें, कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार भी करे तब भी हम भला व्यवहार करें, यही इस कहानी से अपने को शिक्षा मिलती है। अच्छा, एक और सुनाता हूं। एक आदमी था, वो गांव में खेती बाड़ी करता था, उसके 4 लड़के थे, वो सब बड़े होने लगे और ये किसान जो था वो बूढ़ा होने लगा। अब सब काम उसने लड़कों के जिम्मे कर दिए और अपना सादा जीवन बिताने लगा। गांव के लोग उसके भले स्वभाव के कारण उसका बहुत सम्मान करते थे, देखो बच्चों जो अच्छा व्यवहार करता है उसे सब पसंद करते हैं, उसका सब सम्मान करते हैं, तो गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन लड़कों ने देखा कि पिताजी घूम घूम कर और गांव में जितनी भी आम की गुठलियां पड़ी हैं वो इकट्ठी कर रहे हैं, तो उनको बहुत बुरा लगा कि अरे पिताजी को क्या हो गया, ये दूसरे के खाए हुए जूठे आम की गुठलियां उठा के रखने की क्या आवश्यकता है, लोग क्या कहेंगे कि इनके लड़कों को अपने पिताजी को ऐसा करते हुए देख करके और दुख नहीं होता, सबको होता है। तो उन्होंने पिताजी से बहुत कहा, पिताजी ने कोई जवाब ही नहीं दिया और वो अपने काम में लगे रहते, सुबह से झोला लेके चले जाते और गांव में सब में घूम करके जितनी गुठलियां मिलती सब भर के ले आते, पर उन गुठलियों का क्या करते हैं ये किसी ने नहीं देखा। अब लोग भी हंसने लगे कि आखिरी समय और इनको ये क्या सूझी, और बच्चे जो है उनके बड़े झुंझलाते थे लेकिन अब क्या कहें, पिताजी को कैसे समझाएं। एक दिन ऐसा हुआ कि पिताजी का जीवन समाप्त हो गया, मृत्यु आ गई, वे परलोक चले गए। कुछ दिन के बाद लोगों ने देखा कि गांव के चारों तरफ और ढेर सारे हरे भरे आम के पेड़ ही पेड़ उग आए हैं। तब लोगों के समझ में आया कि वो व्यक्ति वो कितना भला व्यक्ति था कि उसने देखा कि अब जीवन का अंत आने वाला है, तो जीवन के अंत में भी मैं सबकी भलाई के लिए कोई काम करके जाऊं, तो उसने सब की दृष्टि में तो अच्छा काम नहीं लगा गुठलियां उठाना, लेकिन जब आम के पेड़ लग गए तब सबको अच्छा लगा कि भले लोग अपने अंत समय तक जो है सबकी भलाई ही करते रहते हैं। ऐसा ये घटना है। एक स्कूल की घटना सुनाते हैं। क्या हुआ, एक स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, तो उसमें से 2 बच्चों के बीच में आपस में झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, तो प्रिंसिपल साहब आ गए। प्रिंसिपल आ गए तो दोनों ने फिर एक दूसरे की शिकायत करी कि इसने मुझे मारा, वो कहने लगा इसने मुझे मारा, ये ज्यादा शैतान है। तो अब प्रिंसिपल क्या कहें, बोले मुझे तो लगता है तुम दोनों बहुत बहादुर हो। वाह, तो दोनों बहुत खुश हुए कि प्रिंसिपल साहब हमको बहादुर कह रहे हैं। फिर प्रिंसिपल साहब ने कहा अच्छा बताओ बहादुर किसे कहते हैं, तो एक ने कहा कि जो बहादुरी का काम करता है उसे बहादुर कहते हैं। अच्छा पूछा कि ये बताओ कि बहादुरी का काम आसान होता है या कि मुश्किल, तो वो दोनों कहने लगे कि बहादुरी का काम तो हमेशा मुश्किल ही रहेगा। अच्छा ठीक है, तो अब ये बताओ कि जब आदमी को गुस्सा आ रहा हो उस समय जिस पर गुस्सा आ रहा है उसे मुक्का मारना आसान है या गुस्से को अपने भीतर जब्त करके रखना आसान है। अब दोनों हक्के वक्के रह गए। दोनों ने कहा कि गुस्से को जब्त रखना मुश्किल काम है, मुक्का मारना तो बहुत आसान काम है। तो प्रिंसिपल बोले, बताओ तुम दोनों बहादुर हो अगर तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तब उन्होंने प्रिंसिपल साहब के सामने कहा कि हम आगे से ध्यान रखेंगे, बहादुर तो वो ही है जो कि गुस्सा आने पर भी किसी को मारपीट नहीं करता, बल्कि अपने गुस्से को जीत लेता है। अपने अपनी बुराइयों को जीत लेना ही बहादुरी है, अपनी बुराइयों को बढ़ावा देना और दूसरे को तकलीफ पहुंचाना, इसमें कोई बहादुरी नहीं है। ऐसा उन्होंने इस कहानी की घटना के माध्यम से इतना बड़ा संदेश उन बच्चों को दे दिया। एक बार की बात है कि एक अम्मा रेल में चली जा रही थी। वो देखने में बहुत भली मालूम पड़ रही थी, चेहरे पर भी उनके सबके प्रति बड़ा प्यार झलक रहा था, लेकिन वो जिद कर रही थी कि हमको खिड़की के पास बैठने दो, जैसे बच्चे लोग करते ना ट्रेन में कि हम खिड़की के पास बैठेंगे, सब देखते हुए जाएंगे। तो लोग हंसने लगे उनकी इस जिद को सुनकर के। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बूढ़ी अम्मा है तो बिठा दो भाई, खिड़की के पास बिठा दो। उनको खिड़की के पास बिठा दिया। थोड़ी देर में लोगों ने देखा कि वो अपने एक छोटे से झोले में से निकालकर कुछ बाहर डालती हैं। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या कर रही हैं। आखिर जो है एक व्यक्ति ने पूछ ही लिया कि अम्मा आप ये क्या डाल रही हैं? बोली कुछ नहीं कुछ नहीं। तो फिर थोड़ी देर तक सब चुपचाप रह गए। जब उन्होंने फिर से जो है कुछ बाहर खिड़की से हाथ निकाल के डाला तो फिर लोगों से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा अम्मा बताओ आप क्या झोले से निकाल के डाल रही हैं? तो उन्होंने कहा भैया मेरे पास झोले में कुछ रंग बिरंगे सुंदर फूलों के बीज हैं, मैं उन्हें बाहर बिखेर रही हूं। तो लोगों ने कहा कि अरे इससे क्या होगा? तो वो बोली कि मैं तो सोचती हूं कि हमारी भूमि को अगर हमें सुंदर बनाना है तो फिर जब मैं यात्रा करूं तब जहां जहां जिस भूमि से निकलूं उस भूमि को मैं अगर फूलों के बीज डाल करके और सुंदर बनाना चाहूं तो बना सकती हूं। जब ये बीज जम जाएंगे तो इनमें से फूल उगेंगे, उनकी सुगंध से सारी जमीन हरी भरी और खुशहाल हो जाएगी। देखो हम अपनी यात्रा कर रहे हैं और उसमें इतना अच्छा विचार हमारे पास है, तो अच्छे विचार और अच्छे काम के बीज अगर हमारे पास हैं तो हमें हमेशा सब जगह बिखेरते रहना चाहिए। अच्छे विचार और अच्छे कार्य को जितना हम विस्तार देंगे उतना ही सब और अच्छाई फैलती चली जाएगी। एक तीर्थ यात्रा की घटना है। सब लोग तीर्थ यात्रा कर रहे थे, पैदल पैदल जाना था, कहीं कहीं पहाड़ चढ़ना पड़ता था, कहीं पर नदी पार करना पड़ती थी, तो सब जो है थक ही जाते थे। अब पहाड़ चढ़ते चढ़ते सब थक गए, सबको कोई ना कोई तकलीफ। अब जब थोड़ी देर आगे चल करके सब लोग बैठते थे, विश्राम करते थे, तब उस समय आपस में चर्चा करने लगते थे। कोई कहता था अरे मेरे तो बहुत सिर में दर्द हो रहा है, कोई कहता भैया सिर में दर्द तो ठीक है, मेरे तो कमर में बहुत दर्द हो रहा, किसी के पैर में दर्द हो रहा था, सब जो है परेशान थे। अब पैदल यात्रा में तो सबकी हालत बुरी थी। उत्तर काशी के पास एक चट्टान पर सब बैठे बैठे ऐसे ही अपना रोना रो रहे थे, वो वहां की घटना है। तो मैंने देखा कि एक देहात की महिला वहीं पर बैठी हुई थी। वो उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं थी, 30-40 वर्ष की थी। मैंने उससे पूछा कि क्यों बहन, क्या हाल है आपका, क्योंकि वो किसी से कुछ नहीं बोल रही थी। तो हमने सोचा कि जब वो बोल नहीं रही तो उसकी पीड़ा बहुत ज्यादा होगी, इसलिए उससे कहते ही नहीं बन रहा, पर उसकी पीड़ा चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं झलकती थी, वो तो प्रसन्नचित बैठी थी। तो वो थोड़ा सार सहमी, फिर बोली कि भैया तीर्थ में दुख सहा जाता है, कहा नहीं जाता है। बस इतनी सी बात सुनकर के सबके चेहरे भी खिल गए, सबका दुख परेशानी सब भूल गए और उसके मुस्कुराते चेहरे को देख करके हम सबकी पीड़ा भी गायब हो गई। देखो तीर्थ यात्रा में और कितनी बढ़िया बात, हमारे मन में क्या आना चाहिए, यही कि हम एक अच्छा काम करने जा रहे हैं तो फिर उसमें आने वाली मुश्किलों को तो हमें शांत भाव से सहन करना चाहिए। कहने से मुश्किल कम थोड़ी होती है, वो तो सहने से ही कम होती है। एक गांव में एक आदमी रहता था, उसके आंगन में एक पौधा अपने आप उग आया। जब वो बड़ा हुआ तो उसमें फल लगे और वो फल पक करके बड़े सुंदर दिखते थे। एक दिन जब वो फल पक करके नीचे गया तो उसे कुत्ते ने खा लिया। जैसे उस कुत्ते ने वो फल खाया उसके तो प्राण ही निकल गए। वो आदमी सोच में पड़ गया कि क्या बात है। कुछ दिन के बाद जो है पड़ोसी का बेटा आया, बढ़िया फल देखकर उसने उठाया, जरा सा उसको खाया, वो भी मर गया। अब तो वो आदमी बहुत घबराया, वो समझ गया कि अरे ये तो विष फल है। उसे बहुत दुख हुआ कि उसके आंगन में ये विष फल उग के आ गया, विष का वृक्ष आ गया। उसने सारे वृक्ष को काटकर फेंक दिया। कुछ दिन के बाद फिर उसने देखा कि उसमें फिर से शाखाएं निकलने लगी, उसने फिर से काट दी, पर वो जो थोड़ा सा ठूंठ बचता था उसमें से फिर अंकुर फूट जाता और फिर पौधा बड़ा होने लगता। आदमी सिर पकड़ के बैठ गया कि अब क्या करें। तो जो उसका पड़ोसी था वो बहुत दिन से देख रहा था कि ये अपने इस वृक्ष को बार बार काटता है, फिर ये उगाता है, ये परेशान होता है। पड़ोसी ने कहा, सुनो इसमें हैरान होने की क्या बात है, तुम इस पेड़ को मत काटो, इस पेड़ की जड़ें काट दो। तुम इस पेड़ की जड़ें काट दोगे तो फिर ये पेड़ कभी हरा भरा नहीं होगा। देखो ये तो पेड़ की घटना है, पर ऐसे ही हम अपने जीवन में जो बुराइयां आ जाती हैं हम उनको ऊपर ऊपर थोड़ा छोड़ देते हैं, पर बुराई की जो जड़ हमारे भीतर है, हैं, उस बुराई की जड़ को ही समाप्त कर देना चाहिए, तब फिर हमारे भीतर कोई बुराई उत्पन्न ही नहीं होगी। बुराई की जड़ क्या है? बुराई की जड़ अहंकार है, बुराई की जड़ क्रोध है, बुराई की जड़ लोभ है, ये सब बुराई की जड़ें हैं। इनको हमें अपने जीवन में समाप्त कर देना चाहिए तो हमारा जीवन बहुत अच्छा और सुंदर बन जाएगा। अच्छा एक राजा की कहानी सुनाते हैं। एक राजा था, उसने अपने राज्य के लोगों से पूछा कि बताओ मेरा राज्य अच्छा है या कि मेरे पिता का राज्य अच्छा है या मेरे बाबा का राज्य अच्छा था। तो लोगों ने कहा कि आप ऐसा करें, हम तो कुछ इस बारे में बता नहीं पाएंगे, पहाड़ पर जो एक बूढ़े बाबा रहते हैं उन्होंने तो तीनों राज्य देखे हैं, आपका भी, आपके पिता का भी और आपके बाबा का भी, उन्हीं से पूछ लेते हैं। वो पहुंचे, साधु जी ने बताया कि देखो हम तुम्हें सुनाते हैं घटना, उससे समझ में आ जाएगा। कि एक किसान ने दूसरे किसान को अपनी जमीन जोतने के लिए दे दी। हल चलाते वक्त वहां पर एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ कलश मिला। वो किसान को वापस देने आया तो उसने इनकार कर दिया लेने से। अब दोनों में से कोई भी रखने को तैयार नहीं हुआ तो राजा के पास आए, राजा को दे दिया। तो उन्होंने कहा कि जमीन तुम्हारी है, जो निकले वो तुम्हारा है। तो फिर ये निर्णय हुआ कि वो कलश जमीन में ज्यों का त्यों रख दिया। जिसकी जमीन थी उसे तो मिला नहीं था, दूसरे को जोतने से उसमें मिला था, उसने भी लेने से इनकार कर दिया, राजा ने भी इनकार कर दिया, तो वहीं के वहीं उसको रख दिया। ये इस तरह की घटना तुम्हारे बाबा के जमाने में होती थी। फिर आया तुम्हारे पिता का जमाना, पिता के राज्य में किसान के बेटे ने दूसरे किसान के बेटे से कहा कि ठीक है हमने वो जमीन तुम्हें दी थी, कलश हमें दे दो। दूसरे किसान के बेटे ने इनकार कर दिया। मालिक किसान का बेटा लौट गया, कोई बात नहीं मत दो तो मत दो, ऐसे करके ये तुम्हारे पिता के राज्य में ऐसा हुआ। अब अब तुम्हारा राज्य है, मालिक जो उस जमीन का है, उस किसान का जो पोता है, वो उस कलश को लेकर के झगड़ा कर रहा है, दोनों पकड़े गए हैं और कलश राज्य में जब्त हो गया है। अब तुम ही सोचो कि तुम्हारा राज, तुम्हारे पिता का राज और तुम्हारे बाबा का राज, इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है? तो बच्चों क्या जवाब दोगे? यही कि बाबा का राज सबसे श्रेष्ठ था, वहां दूसरे की संपत्ति को कोई भी छीनने क्या रखने को भी तैयार नहीं था। फिर धीरे धीरे स्थिति ऐसी आ गई कि अपनी संपत्ति तो ठीक ही है, दूसरे की संपत्ति को भी हड़पने का भाव आ गया। ये क्यों आ गया? क्योंकि धीरे धीरे लालच बढ़ने लगा, और अपन पढ़ते हैं ना, लालच बुरी बला है, यही तो है। तो ऐसा आज का समय होता जा रहा, अपने को क्या सीखना चाहिए कि लालच नहीं करनी। ये यशपाल जी ने एक संस्मरण लिखा अपने जीवन का। वो यूरोप प्रवास में लंदन के बाद बर्लिन पहुंचे। वहां लोग जर्मन भाषा जानते थे, अंग्रेजी का प्रचलन कम था, तो भाषा की बड़ी समस्या आई। लंदन में मालूम पड़ा कि विश्वविद्यालय में दो भारतीय छात्र भी रहते हैं, उनसे मदद मिल सकती है। तो ये जाकर के उनसे मिले, पर उन्होंने कहा उन भारतीय छात्रों ने कि हमारे पास तो समय ही नहीं दे पाएंगे, हम तो अस्वस्थ हैं। ऐसा उन्होंने टाल दिया। तो यशपाल जी लिखते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं उदास होकर के नीचे आया, तो वहां पर एक जर्मन युवक मुझे चिंतित देख करके और बोला कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे यही मदद चाहिए कि मेरी भाषा का आप ट्रांसलेशन कर दें, आपको जर्मनी आती है। उन्होंने कहा हां। बस वो घर जाकर के एक घंटे में वापस आ गया और उसने पूर्वी पश्चिम सारा बर्लिन 2-3 दिन तक घुमाया। घूमते घूमते जब पूर्वी और पश्चिम बर्लिन की सीमा पर पहुंचे तो उस युवक ने कहा कि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि पूर्वी और पश्चिम बर्लिन अलग अलग बट गए हैं, आप अपने देश जाके ये बात नहीं सोचना कि यहां के लोग इतने झगड़ालू हैं, हम लोग जल्दी ही इस को फैसला कर लेंगे और ये विवाद शांत हो जाएगा। फिर वो नवयुवक जब ये वापस लौटने लगे अपने देश, तो हवाई अड्डे तक उन्हें छोड़ने आया। तो यशपाल जी ने कहा कि भाई तुम्हारा बहुत एहसानमंद रहूंगा, तुमने मुझे 3 दिन समय देकर सारा अपना देश घुमाया, मैं तुम्हारे उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। तो मालूम वो नवयुवक क्या बोला कि आभारी तो मैं हूं कि जो आपने मुझे इतने प्यार से 3 दिन तक अपने साथ रखा। देखो हम तो किसी के ऊपर थोड़ा सा उपकार करते हैं और चाहते हैं कि हमको बहुत श्रेय मिले, लेकिन ये कैसे लोग हैं जो उपकार करने के बाद भी और उल्टा कृतज्ञता ही व्यक्त करते हैं, हमें भी इसी तरह उपकार करके और कृतज्ञता ही व्यक्त करना चाहिए, यही पाठ इससे हमें लेना चाहिए। बच्चों एक साधु जी की कहानी सुनाता हूं। एक साधु जी थे, जब लोग उनसे प्रवचन करने को कहते तो साधु जी कहते कि श्रोता को आने दो। बात यह थी कि एक तेली दंपत्ति थे, उनके आने पर भी ही वे साधु जी प्रवचन शुरू करते थे। ये बात विद्वानों को बहुत चुभती थी कि अरे क्या हम श्रोता नहीं हैं? तो जब साधु जी से कहते कि आप बताइए इसका क्या कारण है, तो साधु जी मुस्कुरा देते और कहते कि समय आने पर बताऊंगा। एक दिन तेली दंपत्ति जरा विलंब से आए, तो उन्होंने कारण पूछा तो मालूम पड़ा कि रात में चोर आए थे उनके घर में। तो उनकी जो जीवन साथी थी वो तो जाग गई, ठीक है जाग गए तो कोई बात नहीं, अब चोर माल ले जाएं तब तक तो चुप ही रहना था। उन्होंने करवट बदली तो चोर भाग गए। तो वो जो तेली था उसने कहा कि मैंने अपनी जीवन साथी से बहुत कहा कि तुम इतना प्रवचन सुनती हो, अरे जिसे जिस चीज की जरूरत है उसे ले जाने दो, तुमने करवट क्यों बदली। वो चोर भाग गए बेचारे। तो वो तेलन बोली कि गुरुजी बात तो ठीक है, करवट बदलने का कारण भी तो मालूम पड़, आप पूछिएगा। उसने चोर ने मेरे एक हाथ का कंगन तो निकाल लिया लेकिन दूसरा हाथ नीचे दबा था, अब वो करवट लिए बिना उसको तो चुराने में बहुत परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने करवट बदल ली कि वो भी चुरा ले। लोग सुन करके दंग रह गए। साधु ने कहा कि यही जवाब है मेरा, जो मेरे प्रवचन को सुन करके जीवन में उतारे वही तो सच्चा श्रोता है, इसलिए तो मैं इनके आने पर ही अपने प्रवचन शुरू करता था। एक गरीब आदमी था, उसका 12 साल का बेटा बीमार पड़ा, एक ही तो उसके बेटा था, डॉक्टर की फीस के पैसे भी उसके पास नहीं थे, फिर भी बड़े डॉक्टर को वो लाने गया। डॉक्टर जब तक आया तब तक वो लड़का चल बसा। वो गरीब पड़ोसी से डॉक्टर की फीस 25 रुपए मांग के लाया था लेकिन डॉक्टर ने नहीं लिए पैसे, कहा कि भाई मैं कुछ देर पहले आ जाता तो तुम्हारा बेटा बचा लेता, अब पैसे किस बात के लूं। डॉक्टर रिक्शे में बैठ के आया था, वापस लौटने पर रिक्शे वाले ने भी रुपए लेने से डॉक्टर से इनकार कर दिया कि जब आपने फीस छोड़ दी तो मैं भी तो पैसे नहीं लूंगा। डॉक्टर ने कहा भैया मेरी और तुम्हारी कमाई में बहुत अंतर है, तुम्हें लेना चाहिए। तो रिक्शे वाले ने क्या जवाब दिया, डॉक्टर साहब मनुष्यता में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, अगर आप मनुष्यता के नाते अपने पैसे छोड़ सकते हैं तो क्या मैं मनुष्यता के नाते आपसे पैसे नहीं लूं, यही तो मेरे लिए श्रेष्ठ मालूम पड़ता है। और उधर जब पड़ोसी ने भी उस गरीब ने पड़ोसी के पास जाकर पैसे लौटाने चाहे तो उस पड़ोसी ने मना कर दिया। देखो कैसी अद्भुत जो है वो मानवता है, हमारे सबके जीवन में ऐसी मानवता आनी चाहिए। एक साधु जी थे, दूसरी कहानी सुनाते हैं। बड़े परोपकारी थे, रास्ते से चले जा रहे थे तो एक घायल सिपाही मिल गया, तो उन्होंने सोचा कि बेचारे को धर्म की चार बातें बता दूं तो गति सुधर जाएगी। पर सिपाही को जब वो सुनाने लगे तो सिपाही ने दुखी होकर कहा कि मुझे इस समय धर्म नहीं सुनना, अगर तुम पानी पिला सको तो पिला दो। बस साधु जी ने झट से जो है पानी ला करके उसको पिलाया। सिपाही ने सिर ऊंचा करने को कहा तो साधु जी ने वो भी कर दिया। अब अस्वस्थता की वजह से ठंड जो है लग रही थी बहुत, तो साधु जी ने अपनी चादर भी उसे उड़ा दी। अब तो सिपाही का मन भर आया, उसने कहा महाराज मैंने आज तक धर्म नहीं पढ़ा पर आपकी सेवा देखकर मुझे लगा कि यदि धर्म पढ़ने से ऐसे अच्छे भाव आते हैं तो आप मुझे जरूर धर्म पढ़ाओ। आचरणवान व्यक्ति का ज्ञान ही सच्चा है, उससे जो संदेश मिलता है वही संदेश जीवन में कार्यकारी हो जाता है। एक बार की बात है कि युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को भोज कराया, वहां पर एक न्योला जूठन में लोट रहा था। कारण पूछा तो मालूम पड़ा कि एक आदमी की चार लोगों की गृहस्थी थी, मेहनत करके वो खेत से अनाज बीनकर 8 रोटी बनाता था, उसमें से एक भिखारी आ गया तो उस आदमी ने उसे अपने हिस्से की रोटी दे दी। वो तृप्त नहीं हुआ तो एक एक करके परिवार के सबने अपनी अपनी रोटी दे दी, वो भिखारी तृप्त हो गया, आशीर्वाद देकर गया। मैं उस जगह पड़ी हुई जूठन में से निकला जो आधा शरीर है वो तो मेरा स्वर्णमय हो गया। सोचा कि यहां तो बहुत ब्राह्मणों का भोज हुआ है, हैं? मालूम ये कौन बोल रहा है? ये नेवला कह रहा है कि उस जो मेहनत करके और खेत में कमाता था और वो उसके यहां पर जब ऐसा भोजन का आयोजन हुआ तो मेरा शरीर आधा सोने का हो गया। मैंने सोचा कि यहां तो बहुत ब्राह्मणों का भोज हो रहा है, यहां से निकलूं तो सारा शरीर स्वर्णमय हो जाएगा, पर कुछ भी नहीं हुआ। युधिष्ठिर सोच में पड़ गए कि विनय से नीति न्याय के द्वारा सतपात्र को दिया दान ही फलदायी होता है। अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। तो शाम को वो घूमने निकले, एक जगह हमने देखा कि कुछ मजदूर जो है वो लकड़ी का गट्ठा ऊपर चढ़ा रहे हैं, पर वो चढ़ नहीं रहे हैं। अगर एक आदमी और उनका साथ दे तो गट्ठा आसानी से चढ़ जाए। तो उनका जो सुपरवाइजर था वो वहीं खड़ा खड़ा उन्हें जोर लगाने के लिए तो कह रहा था, पर खुद मदद नहीं कर रहा था। राष्ट्रपति ने उससे भी जोर लगाने को कहा तो वो नाराज होकर बोला कि तुम कौन हो, मुझे नहीं जानते, मैं सुपरवाइजर हूं। और राष्ट्रपति ने कहा कि अच्छा ये बात है, आप सुपरवाइजर हैं। और फौरन जो है उन मजदूरों को मदद करके और उसका जो लट्ठे चढ़ा रहे थे वो लकड़ी के गट्ठे उनको चढ़वा दिया और कहा कि सलाम सुपरवाइजर साहब, कभी काम पड़े तो मुझे जरूर बुला लेना, मेरा नाम जॉर्ज वाशिंगटन है। अब तो जो है सुपरवाइजर खबड़ा गया, वो चरणों में गिर गया। राष्ट्रपति ने कहा कि मैं तो तुम्हें माफ कर देता हूं, पर इतना जरूर ध्यान रखना कि भविष्य में कभी भी मानवता का और श्रम का अपमान मत करना। ऐसे भी लोग जगह जगह हुए हैं, ये अच्छे लोग हैं। तीन विद्यार्थी पढ़ते थे एक गुरुजी के पास में। तो गुरुजी ने एक दिन उनकी परीक्षा ली। अब उनकी पढ़ाई पूरी होने वाली थी तो तीनों को एक एक केला दिया और कहा कि जाओ जहां पर कोई नहीं देखे वहां पर खाना। तीनों चले गए। एक ने खूब दूर जंगल में जाकर एकांत देखा और एकांत में केला खा लिया। दूसरे ने सोचा अरे यहां तो पक्षी भी देख लेंगे, तो वो गुफा के भीतर घुस गया और वहां जाकर के खाया। और तीसरे ने तो खाई नहीं और चुपचाप लौट आया। तो जब गुरुजी ने पूछा कि तुमने केला क्यों नहीं खाया, तो तीसरे वाले ने कहा कि गुरुजी मैं तो आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, क्या करूं, क्योंकि कहीं भी मैं खाने का सोचता था पर कोई और देखे चाहे ना देखे, पर स्वयं मेरी आत्मा तो देखती है, परमात्मा तो देखते ही है। गुरु ने कहा कि वाह तुम पास हो गए, प्रज्ञा यही है, आत्मबोध और परमात्मा की उपस्थिति का ख्याल बना रहे, यही तो जो है जीवन की सार्थकता है। बस इस तरह वो तीसरा वाला बच्चा पास हो गया। एक कैदी था तो उसको मृत्यु की सजा दे दी गई। अंतिम समय जब उसको राजा के पास लाया गया तो बहुत पीड़ा और क्रोध से तो भरा ही था, उसने राजा को बहुत सारे अपशब्द कह दिए। राजा समझ नहीं पाया उसकी भाषा, तो उसने मंत्री से पूछा कि क्या कर रहा है, ये क्या कह रहा है। तो मंत्री ने उस गरीब व्यक्ति पर दया करके और राजा से झूठ बोल दिया कि राजन ये आपसे क्षमा मांग रहा है, जो क्षमा कर देता है वह अत्यंत श्रेष्ठ होता है, ऐसा ये कह रहा है। तो राजा ने जो है उसको क्षमा कर दिया। पर एक दूसरा मंत्री भी बैठा था, वो तो उस बड़े मंत्री से ईर्ष्या करता था, तो उसने फौरन उठ के कहा कि नहीं महाराज, ये बंदी तो आपको गालियां दे रहा है और ये जो बड़े मंत्री हैं वो आपसे झूठ कह रहे हैं। तब राजा ने सारी बात सुनने के बाद कहा कि मंत्री जी तुम्हारा सत्य बोलना भी मुझे पसंद नहीं आया, उस बड़े मंत्री का झूठ बोलना भी मुझे पसंद आया, क्योंकि उसमें दूसरे के लिए भलाई है, तुम्हारी सच्चाई में तो दूसरे का अहित है। सत्यम वद प्रियम वद, क्या कहते हैं, ऐसा सच नहीं बोलना जिससे कि दूसरे का अहित होता हो, दूसरे की रक्षा के लिए झूठ भी बोलना पड़े तब भी दूसरे के प्राणों को बचाने के लिए झूठ बोला गया झूठ भी अच्छा माना जाता है। एक राजा जी थे, राजाओं की कहानी तो बहुत आती है। तो वो राजा जी जो है वो सन्यासी के पास में गए, साधु जी के पास में। उन्होंने जो है साधु जी की प्रशंसा की और त्याग की प्रशंसा की, कहा कि धन्य है आपकी चरित तपस्या। साधु जी ने कहा कि राजा जी, मेरे त्याग से तो आपका त्याग बड़ा है, मेरे सामने मोक्ष का सुख है, वो बड़ा सुख है, उसे पाने के लिए मैंने जरा सी संपत्ति छोड़ दी, लेकिन आप तो उस महान मोक्ष के सुख को छोड़ करके धन को जो थोड़ा सा सुख मिलता है उसको अपनाए हुए हैं, बताइए आपका त्याग ज्यादा है कि मेरा। साधु जी की बात का मर्म राजा समझ गए और इतनी सी बात से और संसार से विरक्त हो गए। भैया ऐसे ही अपने जीवन में जो है अपने को विचार करना चाहिए और संसार में आसक्त नहीं होना चाहिए। एक सुकरात हुए हैं, तो उनकी जीवन साथी जो है बड़ी गुस्सैल थी ऐसा बताते हैं। एक बार जब सुकरात दोपहर में भोजन के लिए देर से पहुंचे, तो जैसे ही घर में घुसे तो उनकी जीवन साथी जो है और बहुत गुस्से में आकर उनको और अपशब्द कहने लगी, बहुत बातें कही उन्होंने। सुकरात चुपचाप सुनते रहे कि अब क्या करें, देर तो हो गई। फिर उन्होंने देखा कि अब तो शांत हो ही नहीं रही है ये, और बात ना बिगड़ जाए, तो चुपचाप मुड़े और बाहर जाने लगे। तो उनकी जीवन साथी घबराई कि अब ये 2-3 बजे तो लौट के आए हैं और बिना खाए और चले जाएंगे। तो उन्होंने मारे गुस्से के और जो धौन धान रखा हुआ था हाथ धोने का, वो उनके ऊपर पीछे से डाल दिया कि कहां जा रहे हो। तो बस सुकरात जो है मुड़कर के बहुत जोर से हंसे, बोले भगवान हमने तो सुना था कि गरजते बादल बरसते नहीं है, आज तो गरजे भी और बरसे भी। बस अब ऐसे में उनकी किसको गुस्सा आएगी, तो सारा वातावरण शांत हो गया। और इस तरह अपन को भी जो है दूसरे के कोई गुस्सा करे तो उस गुस्से को शांत करने का उपाय करना चाहिए। अपन लोग करते क्या है कि दूसरे गुस्सा आए तो अपन भी गुस्सा करने लगते हैं, तो और गुस्सा बढ़ जाता है। हैं, समझ में आया ना बच्चों? ऐसे ही एक और घटना है उनके सुकरात के जीवन की। वो दीपावली के बाद वो गन्ने की 11 साथी ना, तो वो उस दिन उनको भेजा उन्होंने उनके जीवन साथी ने कि जाओ गन्ने लेकर के आओ, और 11 गन्ने लेकर के आना। उन्होंने कहा ठीक, लिए पैसे और चल दिए। अब बड़े तो दानी बाबा थे वो, तो जब 11 गन्ने लेकर के वापस लौट रहे थे तो बच्चों ने घेर लिया, बाबा गन्ना देव, बाबा गन्ना देव। तो हैं छोटे बच्चे करते ही हैं, तो सबको थोड़ा 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 वो देते गए। और जब घर तक पहुंचे तब तक तो एक ही गन्ना बचा। अब बड़ी घबराए कि अब तो जीवन साथी गुस्से में आएगी, आए बिना रह नहीं सकती। तो जैसे ही उन्होंने दरवाजा खुलवाया तो उनकी जो जीवन साथी थी उनने देखा कि ये 11 गन्ने की जगह एक ही गन्ना लेकर के आए। तो बस गुस्से में आकर के वो गन्ना छुड़ा के और इनकी पीठ पर मार दिया, तो वो गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। सुकरात बहुत जोर से हंसे और बोले भगवान अपने को गन्ना तोड़ने नहीं पड़ा, ये 2 टुकड़े हो गए, एक तुम ले लो एक मैं खा लेता हूं। इस तरह जो है उस क्रोध के वातावरण को भी उन्होंने चतुराई के साथ और शांत कर दिया। ऐसा अपने जीवन में अपने को भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए। एक से एक साधु जी की बात सुनाता हूं। वो साधु जी जो है अपने एक शिष्य के साथ चले जा रहे थे यात्रा के लिए। तो रास्ते में बहुत बड़ा जंगल मिला घना, तो उसमें एक पेड़ के नीचे और ध्यान में बैठ गए वो। अब थोड़ी देर हुई कि बस एक शेर आता दिखाई पड़ा, तो वो शिष्य तो बहुत घबराया। उसने कहा अब क्या करूं, तो उसने तो अपनी ध्यानवान छोड़ा और पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अब साधु जी तो चुपचाप ध्यान में लीन थे, वो ऊपर बैठा बैठा वो शिष्य देखता है कि अब क्या होगा। तो वो शेर आता है और साधु जी को सूंघता है, उनके चारों तरफ चक्कर लगाता है, लेकिन वो तो ध्यान में लीन थे तो चुपचाप चला जाता है। वो शिष्य बड़ा प्रभावित होता है, जल्दी से नीचे आकर के और साधु जी के चरणों में लौट जाता है कि अद्भुत है आपका चमत्कार। तो साधु जी कुछ नहीं बोलते, मुस्कुरा करके और आगे बढ़ जाते हैं। वो शिष्य उनसे कहता है कि आपको जरा भी डर नहीं लगा शेर आया था? तब उन्होंने कहा मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ा, मैं तो भगवान के ध्यान में लीन था। तो उस शिष्य की और ज्यादा श्रद्धा बढ़ गई, वो उनके चरणों को बार बार छूने लगा और प्रणाम करने लगा कि अद्भुत है आपकी तपस्या, अद्भुत है आपकी साधना। बस ऐसे बात करते हुए चले जा रहे थे, इतने में जो है और एक कोई कीड़ा आया और वो साधु जी को हाथ में उसने काट लिया। तो साधु जी बड़े जोर से चिल्ला पड़े और बस वहीं बैठ गए, अब तो हम आगे यात्रा नहीं कर पाएंगे, इसने तो बहुत जोर से काट लिया और बहुत दर्द हो रहा है। तो अब उस शिष्य को समझ में नहीं आया कि मामला क्या है, उतना बड़ा वो शेर आया था तब तो चुपचाप बैठ रहे, इतने से कीड़े ने काटा, तो इतना शोरगुल मचा रहे हैं, इतनी तकलीफ हो रही है कह रहे हैं। तो उसने आखिर पूछ ही लिया गुरुजी से कि गुरुजी हमको नहीं समझ में आई, आपकी इतनी अद्भुत साधना है कि शेर आया और आप चुपचाप बैठे रहे और यहां इतने से कीड़े ने काट लिया और आप इतना शोर कर रहे हैं, आप सहन करना चाहिए आपको, इसमें क्या बात है? तो मालूम साधु जी ने क्या जवाब दिया, अरे जिस समय शेर आया था ना उस समय तो परमात्मा मेरे साथ था, लेकिन अभी जो कीड़े ने काटा ना तो तुम मेरे साथ में हो। जब हमारे साथ, समझ में आया ना, जब हमारे साथ भगवान होता है, हम भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, तब कितनी निर्मलता आ जाती है, ऐसा उनका कहने का आशय था। हिंद के बादशाह थे, तो उनके पास में चीन के बादशाह ने पता करने के लिए अपने कुछ लोग भेजे कि आखिर क्या बात है। हिंद के बादशाह से पूछना कि आपके यहाँ पर लोग इतने दीर्घजीवी कैसे होते हैं, बहुत बहुत आयु पाते हैं। तो हिंद के बादशाह ने चीन के बादशाह के द्वारा भेजे गए व्यक्तियों का बड़ा सम्मान किया और कहा आप हमारे यहाँ ठहरिएगा, हम जवाब देंगे। तो वो लोग ठहरे और फिर उन्होंने कहा कि आप कब तक जवाब देंगे, हम कब वापस लौटें आपका जवाब लेकर के। तो उन्होंने कहा कि देखो वो जो महल के सामने एक पेड़ लगा हुआ है, वो पेड़ जब सूख करके गिर जाएगा तब मैं जवाब दूंगा और तब तुम वापस जा पाओगे। अब तो जो है वो जो लोग आए थे जवाब पूछने के लिए, वो तो बड़ी मुश्किल में पड़ गए कि इतना हरा भरा पेड़ है, इतना विशाल पेड़ है, और ये कब सूखेगा, कब नष्ट होगा, और तब जाकर के राजा मुझे जवाब देंगे। अरे भैया यहाँ तो कहाँ फंस गए, अब अपने देश भी नहीं लौट पाएंगे। तो वो उसी महल में रह करके और रोज यही सोचते कि कब पेड़ सूख जाए और कब नष्ट होकर के गिर जाए और हमको जवाब मिले और हम वापस लौट जाएं। बस देखते देखते वो पेड़ जो है इतना हरा भरा होने के बाद भी महीने भर के अंदर ही सूख करके और गिर गया। बस तो ये लोग पहुंच गए हिंद के राजा के पास कि अब देखिएगा पेड़ तो टूट करके सूख करके गिर गया, अब दीजिएगा जवाब। तो उन्होंने कहा कि जवाब तो तुम्हें मिल गया है, जवाब यही है कि हमारे यहां के लोग परस्पर एक दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं रखते हैं, सद्भाव रखते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, और आपके यहां पर अल्प क्यों है आयु, क्योंकि आप दूसरे के बारे में बुरा विचार करते हैं। देखिएगा, आपने जो बुरा विचार किया उस पेड़ के प्रति, इसलिए तो हजार वर्ष तक जीने वाला पेड़ भी और महीने भर के अंदर सूख करके नष्ट हो गया है। है ना, कितनी मजे की बात। अपने को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। एक बात, एक घटना और सुनाता हूं युधिष्ठिर के जीवन की। युधिष्ठिर जो है वो रोज दान देते थे और बहुत लोगों को दान देते थे। जिसको भी दान चाहिए रहता था तो वो एक घंटा लगा था तो वो घंटा बजाता था, तो वो युधिष्ठिर आकर के उसको दे देते थे। एक बार की बात है कि एक गरीब व्यक्ति आया और चूंकि दिन भर हो गया था देते देते, तो जब उसने कहा कि हमको कुछ दीजिएगा, हम बहुत गरीब हैं, तो युधिष्ठिर ने कहा कि देखो अब बहुत समय हो गया, अब मैं तुम्हें कल दूंगा। अब वो बेचारा गरीब आदमी वापस लौटने लगा, उतने में जो है भीम आते भी दिखाई पड़ गए। तो उस गरीब आदमी से पूछा कि तुम्हें कुछ नहीं मिला? तो बोले कि मिल तो जाता, मैं थोड़ा देर से आया, तो राजा साहब बोल रहे हैं कि कल दूंगा मैं। तो उन्होंने कहा ठहरो, हम बात तो कर लें पहले युधिष्ठिर महाराज से। और उन्होंने, भीम ने बहुत जोर से घंटा बजाया, युधिष्ठिर बाप बाहर आए। तो भीम ने कहा युधिष्ठिर से कि क्या मैं देश में ऐसी मुनादी करवा दूं कि मेरे राजा ने और आयु को जीत लिया है? तो उन्होंने कहा क्यों, ऐसी क्या बात है, मैंने कहा आयु को जीत लिया? अब आपके व्यवहार से तो यही लग रहा है कि आपने जैसे आयु को जीत लिया हो। आपने उस गरीब आदमी को और ये कहकर लौटा दिया कि कल दूंगा। अरे क्या कल के बारे में आपको भरोसा है कि आप जीवित रहेंगे या वो व्यक्ति जीवित रहेगा? जब आपको ये भरोसा नहीं है तो आपने उससे कल आने के लिए क्यों कहा, अभी देना चाहिए। युधिष्ठिर बहुत जोर से हंसे, भीम की बहुत प्रशंसा करी और उस गरीब आदमी को तुरंत जो है वो दान दे दिया। अपने यहां पर क्या कहते हैं कि अच्छा काम कल पर नहीं डालना चाहिए, हैं? अच्छा काम तो तुरंत कर लेना चाहिए, क्या पता फिर जीवन में उसे कर पाए या नहीं कर पाए। ये ऐसी घटना जो है हमको संदेश देती है। एक यात्री की घटना सुनाते हैं। वो यात्री यात्रा करते करते थक गया तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसको वहां पर एक चमकीला पत्थर मिला, तो उसने वो अपने पास रख लिया और उसके मन में विचार आया कि बहुत भूख लग रही है, थोड़ा भोजन मिल जाता तो अच्छा रहता, ऐसा उसने मन ही मन सोचा। और बस पता नहीं क्या हुआ और अच्छा बढ़िया बढ़िया और भोजन पकवान आ गए उसके सामने। बड़ा खुश हुआ, उसने खूब अच्छे से भोजन किया। फिर उसने कहा अरे भोजन तो कर लिया लेकिन बढ़िया ठंडा शरबत होता और ठंडा ठंडा पानी होता तो मजा आ जाता। बस सोचने भर की बात थी और फौरन उसको जो है बढ़िया पानी मिल गया, शरबत मिल गया। पर वो अभी भी नहीं समझ पाया कि ये सारा कुछ चमत्कार उस पत्थर की वजह से हो रहा है। वो असल में चिंतामणि रत्न था लेकिन उसे नहीं मालूम था। अब उसके मन में विचार आया कि अब तो बहुत नींद आ रही है, जरा पलंग पलंग बढ़िया होता तो मैं सो लेता थोड़ी देर। बस सब पलंग वगैरह की व्यवस्था हो गई उसके सोचते ही साथ, और वो सो गया। सोते वक्त जो है वो बीच में एक कौवा आकर के पेड़ के ऊपर काव काव करने लगा। अब उसकी आवाज से जो है इनकी नींद बार बार खुल जाती थी, तो बड़ा गुस्सा आया उसको। वो परेशान होकर के उसने वो जो रत्न था उसे तो नहीं मालूम था, वो तो उसको पत्थर समझ रहा था, तो वो फेंक करके उस कौवे को मार दिया। कौवा तो उड़ गया लेकिन वो रत्न भी उसके हाथ से चले गया और वो फिर वैसा ही दीनहीन और फटे हाल हो गया। सब जो कुछ भी था वो उसका रत्न के जाते ही नष्ट हो गया। अरे भैया ऐसी तो हमारा जीवन है, हम जो है अपने जीवन को नहीं जानते हैं कि कितना कीमती है और हम उसको इस तरह व्यर्थ के कामों में और फेंक रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ये इस बात के की सूचना है, इस बात की अपने को ये कहानी शिक्षा देती है कि हमें अपने जीवन की दुर्लभता को समझना चाहिए और उसका सदुपयोग करना चाहिए। एक बाबा की कहानी है, वो बाबा जी के पास में पारस मणि था। जानते हो पारस मणि क्या होता? वो उसको अगर लोहे से छुआ दो तो लोहा सोना बन जाता है, ऐसा वो पारस मणि था। एक व्यक्ति को मालूम पड़ गया कि बाबा के पास तो पारस मणि है, अब वो कैसे मिलेगा? तो बाबा की सेवा करना चाहिए तब मिलेगा, तो वो सेवा करने लगा। अब बहुत दिन हो गए सेवा करते करते, 10-12 बरस तक। एक दिन खुश होकर के उस बाबा ने कहा कि हम तुम्हारी सेवा से खुश हैं, बोलो क्या चाहिए। तो उसको क्या चाहिए था? उसको तो वही पारस मणि चाहिए था। तो उसने कहा हमको वो पारस मणि दे दो। तो उन्होंने कहा जाओ वो उधर रखिए डिब्बी में, ले लो। बस वो उस पारस मणि को डिब्बी में जो रखी थी लेकर के आया, पर रास्ते में उसके मन में आया कि अरे ये लोहे की डिब्बी में पारस मणि रखी है और ये अभी तक सोने की नहीं हुई, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा मुझे बुद्धू बना रहा हूं, झूठ बोल रहे हूं मेरे से। बाबा तो मुस्कुरा रहे थे, समझ रहे थे कि उसके मन में कौन सा भाव आ रहा है। तो उन्होंने पास बुला के कहा कि सुनो, ये डिब्बी सोने की नहीं हुई ये विचार आ रहा ना तुम्हारे मन में? तो उन्होंने कहा हाँ बाबा ये विचार मेरे मन में आ रहा। तो बोले खोलो उसको डिब्बी को। खोला तो उसमें पारस मणि तो रखा था, पर वो एक छोटे से कपड़े में लिपटा हुआ रखा था। हैं? वो डिब्बी में सीधा सीधा नहीं रखा था। तो साधु जी ने कहा बाबा ने कि देखो ये कपड़ा बीच में है, हैं? कपड़े के आवरण की वजह से ही डिबिया सोने की नहीं हुई, पारस पत्थर के संपर्क में आकर भी। मुझे तुमसे यही कहना है कि अगर ये पारस पत्थर लेके जाना है तो चले जाओ, पर सोचो कि 12 वर्ष इसी पारस पत्थर के मोह से तुम घिरे रहे, वरना मेरे सानिध्य में रहकर तुम स्वयं पारस बन गए होते। बस इतनी बात सुनते ही उस शिष्य को सच्चा ज्ञान हो गया और उसने अपने आप को साधु जी के चरणों में समर्पित कर दिया। एक राज्य में राजा नहीं रहा, मर गया था, तो नए राजा की खोज हुई। किसी को ऐसा स्वप्न आया कि एक तोता उड़ाया जाए, वो तोता जिसके ऊपर बैठ जाए उसी को नया राजा बना दिया जाए। तो वो तोता उड़ते उड़ते जंगल में पहुंचा और वहां पर एक लकड़हारे के कंधे पर बैठ गया। बस अब सबने मिलकर के उस लकड़हारे को राजा बना दिया। राजसभा लगी हुई थी और मंत्री राजा के बाजू में बैठे हुए थे। जब राजसभा पूरी हुई तो सभा से उठने का समय आया, तो राजा ने उठते ही अपना सारा बोझ मंत्री के कंधे पर रख करके उठे। तो मंत्री को हंसी आ गई। राजा ने पूछा कि मंत्री जी आपके हंसने का कारण क्या है? तो मंत्री जी पहले तो बहुत डरे, फिर उन्होंने कहा महाराज आप कल तक अपना बोझ उठाते थे, इतना बोझ उठाते थे, और आज जो है आपको उठने के लिए भी मेरे ऊपर अपना बोझ डालना पड़ा, मेरा सहारा लेना पड़ा। तो वो जो राजा बना हुआ लकड़हारा था उसने कहा कि मंत्री जी मैं तो अभी राजकाज से बिल्कुल अनभिज्ञ हूं, राज्य का बोझ तो आपके ही सबल कंधों पर है, यही आप अनुभव करिएगा। कल तक मैं प्रजा में से एक प्रजा का अंग था, आज आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी का पद दे दिया है, पर आपके बिना सहारे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। देखो छोटों के लिए सम्मान भी दिया और अपने पद की गरिमा भी बनाए रखी, ऐसा ही गुण उसके भीतर लकड़हारा होने के बाद भी आ गया। हम लोगों को भी जो है इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि हम जिस पद पर हों उस पद की गरिमा बनाए रखें और अपने से छोटों का को सम्मान भी दें। एक जहाज में कुछ लोग यात्रा कर रहे थे, तो एक आदमी जो है पहली बार जहाज में बैठा था, पानी का जहाज था, चारों तरफ बिल्कुल पानी पानी, समुद्र के बीच में जहाज जा रही, तो वो बहुत घबराया, वो चीखने चिल्लाने लगा, इधर से उधर भागे। सब लोगों ने बहुत समझाया कि तुम डूब थोड़ी रहे हो, जहाज में बैठे हुए, वो काहे को मानने वाला, वो कहता कि हमको तुम लोग जो है मार दोगे, तुम क्या पानी में मुझे डुबाने के लिए ले जा रहे हो, इतना तो सब तरफ पानी पानी दिख रहा है। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये जहाज मुझे उस पार ले जाएगी और पानी में नहीं डूबूंगा मैं, अब कैसे उसको विश्वास दिलाएं। सब समझा के थक गए, लेकिन वो तो शोर मचाई रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि मुझे उतार दो, मुझे नहीं जाना इसमें। तो एक व्यक्ति ने जो है, जो दूर बैठा चुपचाप देख रहा था उसका चीखना चिल्लाना, वो वहां से आया और उसने कुछ नहीं देखा और उठा करके उस व्यक्ति को और समुद्र में फेंक दिया। और जैसे वो समुद्र में गिरा तो फौरन जो है बहुत बड़ा जो रस्सी थी वो भी फेंक दी, तो वो व्यक्ति जो है उस पानी में घबराया हुआ और रस्सी पकड़ करके और वापस आ गया, रस्सी पकड़ के वापस आ गया, जहाज के ऊपर चढ़ गया और उसको बिठा लिया। अब वो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था, जरा भी गड़बड़ नहीं कर रहा था। सबने कहा कि तुमने ये जादू कर दिया क्या? बोले जादू वादू मैंने कुछ नहीं किया, अब इसको ये भरोसा हो गया कि वो जो समुद्र है ना उसमें डूबने की बहुत संभावना है, इस नाव पर मैं बैठा हूं तो अब समुद्र में नहीं डूबूंगा, इसको ये विश्वास हो गया। ऐसे ही जो है अगर हम लोगों को विश्वास हो जाए कि इस संसार सागर में हम लोग किसी भी समय डूब सकते हैं, लेकिन सच्चे देवगुरु शास्त्र की नाव में अगर हम बैठे हैं तो पूरे विश्वास के साथ हम बैठें और कभी भी हम इस संसार समुद्र में नहीं डूबेंगे, ऐसा विश्वास रखें। हम सबको जो है इस तरह के विश्वास को अपने जीवन में लाना चाहिए। हैं? एक संत जी थे, बड़े शांत और निष्प्रही थे, उनका नाम एकनाथ था। एक व्यक्ति उनके पास आए और पूछा कि आपके जीवन का रहस्य क्या है, आप इतने शांत और निष्प्रह कैसे अपना जीवन जीते हैं? तो संत जी बोले कि वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पर सुनो तुम अपना जीवन संभाल लो, 7 दिन रह गए हैं तुम्हारे जीवन के। अब वो बड़ा घबराया व्यक्ति, भागा भागा घर गया और बस सब घर गृहस्थी से मुक्त होकर के भगवान का भजन पूजन करने लगा। 7 दिन निकल गए, 7वें दिन तो वो बिस्तर पर लेटा हुआ कि अब बस आज आखिरी दिन है, मौत तो आएगी, मरना ही है। शाम को एक नाथ जो संत थे वो उसके घर पहुंचे, वो लेटा हुआ था, तो संत ने कहा कि क्यों भाई, कैसे निकले तुम्हारे ये 7 दिन? बोले कैसे निकले ये 7 दिन, आपसे क्या बताऊं, भगवान का नाम लेता रहा और घर गृहस्थी का मोह इन 7 दिनों में नहीं रहा, बड़ी शांति महसूस हुई। तो एकनाथ ने कहा कि यही तो मेरे जीवन का रहस्य है, मैं भी जो है भगवान का नाम लेता हूं और संसार में आसक्त नहीं होता, इसलिए शांत और सुखपूर्वक अपना जीवन जीता हूं। एक नाविक की कहानी है, वो नाव चलाता था, उसका एक मित्र मिला एक दिन, तो उसने पूछा कि पिताजी कैसे हैं? तो उस नाविक ने कहा कि पिताजी तो रहे नहीं। अरे क्या बात हो गई थी? कुछ नहीं, समुद्र में तूफान आया, नाव डूब गई। अच्छा, थोड़ी दूर वो और नाव में चला, फिर उसने कहा कि और घर में मां कैसी है। तो उस नाविक ने कहा कि सुनो, मां भी नहीं रही। क्यों, क्या हुआ? एक दिन जब मां नाव चलाती थी तो समुद्र में तूफान आया तो वो भी डूब गई। तो बहन और भाई के साथ रहते होगे अब तो? उसने कहा, बहन और भाई वो भी नहीं रहे, घर में अब मैं ही अकेला हूं। उनको क्या, उस मित्र ने पूछा तो उसने कहा, होना क्या था, वे दोनों भी नाव चलाते चलाते एक दिन नहीं रहे। नाव डूब जाती है और सबको मरना पड़ता है। तो मित्र ने कहा कि अरे, जब तुम्हारे परिवार के सारे लोग नाव चलाने में डूब गए तो फिर तुम क्यों नाव चलाते हो, क्यों नहीं छोड़ देते? तो वो नाविक जोर से हंसा और उसने कहा कि मैं ये जानता हूं कि जो लोग आज तक नाव में नहीं बैठे, समुद्र तक भी नहीं आए हैं, मौत तो उनको भी आती है, फिर मैं लोगों को इस पार से उस पार लगाने का काम कैसे छोड़ दूं? एक दिन तो सबको मरना है, पर अपना कर्तव्य तो मैं करते ही रहूं। एक और कहानी सुनाता हूं। वशिष्ठ हुए हैं, वो ब्रह्मर्षि कहलाते थे। अरुंधति उनकी जीवन साथी थी। तो एक दिन वो अरुंधति से बोले कि जाओ विश्वामित्र के यहां से भिक्षा में नमक तो ले आओ। अरुंधति बड़ी चकित हुई। जिन विश्वामित्र ने वशिष्ठ के 100 पुत्रों को नष्ट कर दिया और वशिष्ठ का अपमान किया, उन्हीं के घर भिक्षा मांगने जाएं? अरुंधति बोली कि अगर आपका उनसे इतना ही प्रेम है तो उन्हें एक बार आप ब्रह्मर्षि क्यों नहीं कह देते? ब्रह्मर्षि नहीं कहने की वजह से ही तो वो इतना आपके प्रति द्वेष भाव रखते हैं। तो वशिष्ठ बोले, मुझे विश्वामित्र से बहुत प्रेम है ना, इसीलिए तो मैं उन्हें अभी ब्रह्मर्षि नहीं कह पाता। मजे की बात यह थी कि विश्वामित्र बाहर खड़े खड़े ये सारी चर्चा सुन रहे थे। आए थे कि आज फैसला कर लेंगे, या तो वशिष्ठ रहेंगे या कि मैं रहूंगा। पर जब उन्होंने सुना कि वशिष्ठ कह रहे हैं कि मैं तो प्रेम के मारे ही उनको ब्रह्मर्षि नहीं कह पाता हूं, तो उनका मन भर आया और भीतर आकर वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़े। वशिष्ठ ने उनको उठाया ब्रह्म और कहा कि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, अब तुम सचमुच ब्रह्मर्षि हो गए। अहंकार टूटना ही ब्रह्म को प्राप्त करना है। जो अहंकारी है वो कभी भी आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, ब्रह्मर्षि नहीं हो सकता। जो ब्रह्म या आत्मा को जानता है, विनयवान है, वही ब्रह्मर्षि है। ऐसी ये घटना है। एक बार की बात है कि मिथिला नरेश को बहुत तेज ज्वर आया, बुखार, और उस बुखार में उनको पूरे शरीर में बहुत दाह होने लगी। वो दाह ज्वर था। बहुत प्रकार की औषधियां लगाई गईं, बैधाए, लेकिन कोई भी इलाज उनके उस दाह को कम नहीं कर पाया। फिर ये निर्णय हुआ कि दाह थोड़ी कम पड़े इसके लिए सारे शरीर में चंदन का लेप किया जाए, और चंदन जो है वो कौन बांटे, तो जो मिथिला नरेश की रानियां थी उन्होंने कहा कि चंदन बांटने का काम तो हम करेंगे, और सब जो है वो चंदन घिसने लगी। अब चंदन घिसते समय उनके हाथ में जो चूड़ियां पहन रखी थी उनकी बहुत तेज आवाज आई, तो मिथिला नरेश बहुत मुश्किल में पड़े। उन्होंने कहा कि ये तो आवाज ही मुझे बहुत पीड़ा दे रही है, चंदन तो पता नहीं कब घिसा जाएगा। तो मंत्री ने जाकर के रानियों से कहा, और रानियों ने जो है सब चूड़ियां उतार करके एक एक चूड़ी भर अपने हाथ में रखी और फिर चंदन घिसना शुरू कर दिया। अब आवाज नहीं आ रही थी, तो मिथिला नरेश को लगा कि जैसे चंदन घिसना बंद कर दिया है तो फिर मेरा ज्वर कैसे ठीक होगा। तो उन्होंने पूछा मंत्री से कि क्या आप चंदन नहीं घिसा जा रहा है। उन्होंने कहा, महाराज चंदन को तो घिसा जा रहा है, तो फिर आवाज क्यों नहीं आ रही। आवाज इसलिए नहीं आ रही क्योंकि अभी तक दो दो चार चार चूड़ियां हाथ में थी, अब सिर्फ एक एक चूड़ी हाथ में बची है, इसलिए आवाज का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मिथिला नरेश को जैसे बोध की प्राप्ति हो गई, वे सोच में पड़ गए कि अरे अगर मैं भी एकाकी हो जाऊं तो जीवन में शांति हो जाएगी, और उन्होंने संकल्प किया कि यदि मैं सुबह तक इस दाह ज्वर से मुक्त हो गया तो सचमुच ग्रह त्याग करके मैं सन्यास ग्रहण कर लूंगा। और सचमुच ऐसा हुआ कि सुबह तक दाह ज्वर शांत हो गया और मिथिला नरेश सचमुच एक निष्प्रही साधु बनने के लिए घर छोड़कर चले गए। कभी कभी जीवन में एक छोटी सी बात भी पूरे जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त होती है। अच्छा, एक और दूसरी कहानी सुनाता हूं। गांव के बाहर एक आदमी बिल्कुल फटेहाल घूमता रहता था, और वो क्या करता था कि कूड़े के ढेर के पास खड़ा हो जाता, उसमें से जो रंगीन कागज थे तो उनको इकट्ठे करता था। लोग पूछते कि क्या करोगे, तो कहता था रुपए हैं, ये मेरे रुपए हैं, जब बहुत सारे हो जाएंगे तो किला बनवाऊंगा और उस पर अपना झंडा लगाऊंगा, राजा बनूंगा मैं। तो लोग बहुत हंसते थे। एक साधु गुजरा, उसने भी देखा कि ये गरीब फटेहाल आदमी और रंगीन कागजों को इकट्ठे करके और सोचता है कि मैं राजा बन जाऊंगा, तो पहले तो उसे हंसी आई, फिर रोने लगा वो साधु। लोगों ने पूछा कि अरे आप इस फटेहाल व्यक्ति को देखकर पहले हंसे फिर आप रोने लगे, आखिर बात क्या है। तो उस साधु ने लोगों से कहा कि मुझे हंसी आती है इस बात पर कि ये व्यक्ति अज्ञानी होकर के भी बात बहुत समझदारी की कर रहा है, और रो रहा हूं मैं इस बात पर कि ये व्यक्ति कितना नादान है और ये दुनिया भी कितनी नादान है कि सब कुछ समझते हुए भी और इसी में आपाधापी में फंसी हुई है। ये बात तो पते की कर रहा है कि कागज के टुकड़ों को रुपए कहता है, हम सब भी तो कागज के टुकड़ों को ही रुपया मान करके किला बनाने का स्वप्न देखते हैं, उस पर अपना झंडा फहराने का स्वप्न देखते हैं और राजा बनने का स्वप्न देखते हैं। लेकिन ये कागज के टुकड़े रुपए नहीं है, ये नादानी है हमारी। इस नादानी पर तो रोना ही आता है। देखो हमने इस कहानी से क्या समझा, यही कि इस संसार में हम संसार की वास्तविकता को जानकर भी उसी में फंसे रह जाते हैं, इससे बड़ी और क्या नादानी होगी। एक बेटा था, उसके पिता नहीं थे, घर में मां थी। वो मां की सेवा करता था, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता था। मां थोड़ी सी बीमार हुई, वो उसकी सेवा में जुटा रहता था। एक बार की बात कि वो मां के सिरहाने बैठा था, मां अस्वस्थ थी, कि रात में चोर घुसे उसके घर में। वो तो जाग ही रहा था, जैसे ही चोर घुसे तो उसने चोरों को इशारा किया कि जो भी करना हो करो, लेकिन ज्यादा जोर से बोलना नहीं, चुपचाप करो। चोर बड़े चकित हुए कि कहीं ये गड़बड़ में न डाल दे, तो उन्होंने इसको पकड़ करके एक खंभे से बांध दिया और फिर बस सब सामान जो है वो चुराने में लग गए। ये भी कुछ नहीं बोला और चोरों से भी उसने कहा कि देखो चुपचाप काम करना, मां की नींद न खुल जाए। उसे चोरी हो जाने का उतना ख्याल नहीं था जितना कि उसे अपनी मां का ख्याल था कि मां की नींद न खुल जाए। चोर आखिर सब चुरा करके ले जाने लगे और जब एक पतीली जिसमें कि वो मां के लिए दलिया बना के खिलाता था, जब वो भी ले जाने लगे तो उसने इशारा किया कि ये एक पतीली तो रहने दो और चाहे तुम सब ले जाओ। तो चोरों ने कहा कि जब तुम सब ले जाने के लिए कह रहे हो तो इस एक पतीली को क्यों रखना चाहते हो। उसने कहा सुबह जब उठेगी मां और मुझसे कुछ खाने को मांगेगी तब मैं इतनी जल्दी कैसे इंतजाम कर पाऊंगा। ये पतीली अगर तुम छोड़ दोगे तो इसमें सुबह से दलिया बना के मां को खिला दूंगा, फिर कुछ काम करके और जो भी मुझे जरूरी है वो मैं ले आऊंगा, लेकिन अभी तुम कम से कम इसे एक पतीली को मत ले जाओ। चोर उसकी इस बात को सुनकर दंग रह गए और उनका मन भर आया, उन्होंने पतीली ही क्या, उस व्यक्ति का कोई भी सामान चुराने से इनकार कर दिया और वापस लौट गए। ये एक छोटी सी घटना हमें क्या संदेश देती है कि हम यदि अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पूरा करते हैं तो कोई भी हमारे साथ बेईमानी नहीं कर सकता। हम ही जो है जब अपनी ईमानदारी को छोड़ बैठते हैं तो संसार तो हमारे साथ बेईमानी करे या ना करे, पर हम तो बेईमान हो ही जाते हैं। बेटे का कर्तव्य मां की सेवा करने का है, वो उसने किया और उसका फल भी उसे उसी जीवन में देखने के लिए मिल गया। एक कहानी आती है अंधे भिखारी की कहानी। अंधा था वो भिखारी, एक दिन मंदिर के सामने जाकर के उसने आवाज दी कि कुछ खाने को मिले, तो किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया, वहां कौन बैठा था। उसने एक दो बार और आवाज दी तो किसी ने कहा कि अरे आगे जा, इस घर का मालिक किसी को कुछ नहीं देता। वो बड़ा चकित हुआ, उस भिखारी ने कहा कि आखिर ऐसा मालिक कौन है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अरे भाई इस घर का मालिक तो खुदा है। तो भिखारी हंसने लगा और वहीं पर बैठ गया और बैठा रहा। लोग उससे पूछते कि वो आगे क्यों नहीं जाता मांगने के लिए, तो भिखारी कहता कि यात्रा तो पूरी हो गई, ये तो आखिरी द्वार है, अगर यहीं से आगे बढ़ गया तो फिर मुझे कहीं कुछ नहीं मिलेगा। जीवन भर वो वहीं बैठा रहा, जिसने जो दिया उसने ले लिया, पर किसी के सामने उसने हाथ नहीं फैलाया। वो कहता था, परमात्मा के द्वार से कोई खाली हाथ कैसे लौट सकता है। ऐसी उसकी गहरी श्रद्धा थी। हम लोग भी इस कहानी से ये शिक्षा लें कि अगर हमारे जीवन में इस तरह अपने भगवान के प्रति श्रद्धा होगी तो हमारा जीवन बहुत शांति से और बहुत आसानी से हम गुजार सकते हैं। एक राजा की कहानी सुनाता हूं। वो तैमूर का राजा था और बड़ा क्रूर राजा था। वो सोचता था, सबको मारपीट करूंगा, फांसी दूंगा तो लोग मुझसे डरेंगे और मेरे वश में रहेंगे। वो सबको हिंसा के माध्यम से जीतना चाहता था। एक बार की बात कि तीन लोगों को कैद किया गया और तीनों कैदियों को दंड दिया जाना था। अचानक तैमूर के उस राजा ने एक दार्शनिक लगने वाले कैदी से पूछा। उन तीनों में से एक कैसा लगता था कि दार्शनिक है, तो पूछा उससे कि अच्छा बता, ये जो गुलाम है मेरे, इनकी पोशाक की क्या कीमत है, इनकी कितनी कीमत है। तो वो कहता है कि इन सब की कीमत 25 एसआरपी है, 25 सोने के सिक्के में आप इनको खरीद सकते हैं क्योंकि गुलाम है ये। तो उसने कहा, अच्छा ठीक, मेरी कीमत बता, कितनी कीमत है मेरी। सारे लोग दरबार में बैठे हुए थे, वो तो मुश्किल में पड़ गए कि आज तो जो है अभी तो इसको थोड़ा मोड़ा दंड देकर के शायद रिहा कर देते, लेकिन अब तो ऐसा प्रश्न पूछकर लगता है कि इसे मृत्यु दंड ही मिलेगा। देखें क्या जवाब देता है। वो दार्शनिक जो कैदी बना लिया गया था, वो बोला कि आपकी कीमत भी 25 एसआरपी है। बहुत गुस्से में आ गया वो तैमूर का राजा। उसने कहा, दिखता नहीं है, 25 एसआरपी की तो मेरी पोशाक अकेली है। तो उस कैदी ने कहा कि मैंने पोशाक की ही कीमत बताई है आपको, आपकी अपनी कीमत तो कुछ भी नहीं है, इसलिए कुल कीमत 25 एसआरपी में शून्य जोड़ा जाए तब भी 25 एसआरपी ही आता है, आपकी कीमत इतनी है कुल। तैमूर जो है वो दंग रह गया। उसने कहा कि तुम्हारा इतना साहस, तुम कैसे कह सकते हो कि मेरी कोई कीमत नहीं है। तो उस कैदी ने कहा कि जिसके भीतर दया, करुणा और प्रेम नहीं है, उसके जीवन की क्या कीमत है। इसलिए मैंने आपकी कोई कीमत नहीं जोड़ी, आपकी पोशाक की कीमत ही 25 एसआरपी है। कहते हैं तैमूर लंग का जीवन इस घटना से बदल गया और वो जितना क्रूर शासक था उतना ही दयावान हो गया। ये कहानी हमको दया, करुणा और प्रेम सिखाती है। हमारे जीवन की सार्थकता इसी में है। चीन का एक दार्शनिक संत था। वो जंगल में रहा करता था। एक बार सेनाएं वहां से गुजरी तो सेनापति उस साधु के पास जाकर के बोला कि साधु जी, आप क्या लोगों को स्वर्ग और नरक की बातें समझाकर भुलावे में डाले रहते हैं और अपना पेट पालते हैं? स्वर्ग नरक होता होता कहां है, देखा है क्या आपने कभी? तो वो साधु जी बोले कि मुझे तो लग नहीं रहा है कि आप सेनापति हैं। अब बस इतनी बात सुनते ही सेनापति को आवेश आ गया उन्होंने कहा कि मैं तलवार रखता हूं। तो साधु ने कहा कि ऐसे तलवार तो बच्चे भी रखते हैं, तलवार चलाना आनी चाहिए, तुम्हें कहां आती तलवार चलाना। अब तो वो और आवेश में आ गया और उसने तलवार निकाल दी और कहा कि चला सकता हूं मैं तलवार। तो साधु जी ने कहा कि तलवार चलाना आने से क्या होता है, तलवार में धार भी तो होना चाहिए, तुम्हारी तलवार में धार है कहां। अब सेनापति का आवेश और बढ़ गया और उसने तलवार साधु के गर्दन पर रख दी कि बताऊं कितनी धार है इसमें। तो साधु जी ने मुस्कुरा कर कहा कि सेनापति सावधान, इस समय तुम नरक से गुजर रहे हो। ऐसा सुनते ही सेनापति पानी पानी हो गया, वो चौंका और झुक गया साधु के चरणों में। तो साधु ने कहा उठो सेनापति, अब तुम स्वर्ग से गुजर रहे हो। इतनी आसानी से स्वर्ग और नरक की बात उस साधु ने बता दी। सचमुच एक स्वर्ग और एक नरक, ये तो बाहर हमें दिखाई भले ही नहीं पड़ते हों, पर हमारे भीतर तो जब हम दया और करुणा से भरे होते हैं तब स्वर्ग में जीते हैं, और जब हम दूसरे को तकलीफ पहुंचा करके सुख महसूस करते हैं तब हम नरक में होते हैं। एक स्वर्ग एक नरक हम अपने भीतर हमेशा महसूस करना चाहें तो कर सकते हैं। एक आदमी जो है वो नशे में था, उसने शराब पी रखी थी। जब वो अपने घर वापस आया तो ताले में चाबी लगा था, तो नशे की वजह से जो है उसका हाथ हिल जाता और वो चाबी लगती नहीं ताले में। वहां से एक दूसरे व्यक्ति ने देखा उसको, तो उसने कहा कि लाओ मैं चाबी लगा देता हूं। तो बोला कि चाबी तो मैं अपने घर की किसी को नहीं देता, तुम सुनो अगर मेरी मदद करना चाहते हो ना तो जरा इस मकान को संभाल के पकड़े रहो, ये हिल रहा है ना इसलिए चाबी नहीं लग पा रही है ना। मजे की कहानी, हम सब जो है इसी तरह नशे में हैं, हमें लगता है कि पूरी दुनिया घूम रही है जबकि हम स्वयं ही जो है वो उस नशे की वजह से और इस संसार में घूम रहे हैं। मोह का नशा छोटा मोटा नशा नहीं है, ये नशा तो सुबह से शाम उतर जाता है लेकिन सारी जिंदगी जो हम मोह के वशीभूत होकर और भटकते रहते हैं वो नशा ही वास्तव में इस संसार का नशा है। हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि आसक्तियां हमें भटकाती हैं, मोह हमें भटकाता है, हम चाहें तो इससे मुक्त हो सकते हैं।